मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 31 अगस्त 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं बात करने जा रहा हूं डर के ऊपर, यानी कि डर से छुटकारा कैसे पाएं या यूं कह लीजिए कि डर का सामना कैसे करें, डर का मुकाबला कैसे करें, इसी विषय पर हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे। इस विषय को मैंने इसलिए चुना है फ्रेंड्स कि देखिए डर एक ऐसा मनोभाव है जो कमोवेश हर व्यक्ति के अंतर मन में होता ही होता है। हाँ ये बात अलग है कि किसी के मन में बहुत ज्यादा डर होता है जिसे फिर हम डरपोक ही कह देते हैं, किसी के मन में थोड़ा कम होता है, किसी के मन में एकदम ही कम होता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कह सकता कि उसके मन में होता ही नहीं है। सामान्यतया मैं कह रहा हूं, अपवाद के रूप में अब कह लीजिए कि जो आत्मघाती दस्ते होते हैं वो कहते हैं कि साहब हमारे मन में तो कोई भय है ही नहीं, तो आप मान लीजिए, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे। हम तो जीवन की बात कर रहे हैं, हम जीवन के अपवादों की बात नहीं कर रहे हैं। तो मित्रों पहली बात तो यह देखिए कि मानकर चलना चाहिए कि डर हरेक व्यक्ति के मन में मौजूद होता है और यह नैसर्गिक रूप से ही होता है। नैसर्गिक रूप से होता है कहने का मतलब यह है कि आप देखिए कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले रोता है। अब इस रोने की उसकी व्याख्या आप अलग तरीके से कह सकते हैं, है ना। अध्यात्म वाले कहते हैं कि चूंकि वो ब्रह्म था और अब वो आत्मा के रूप में तब्दील हो गया, उसने शरीर धारण कर लिया तो इस अफसोस में रोता है। कोई कहता है कि जैसे ही वो मां के गर्भ के सुरक्षित वातावरण से बाहर आता है, देखिए मां के गर्भ में बच्चा है तो एकदम सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित है, चारों तरफ उसकी सुरक्षा है, बहुत ही गजब की सुरक्षा है, लेकिन अब वो बाहर आ गया है तो वो बहुत जबरदस्त रूप से असुरक्षित महसूस करने लगता है तो रोता है। अब अलग अलग उसके कारण है, लेकिन एक जो कारण मनोवैज्ञानिक है और मुझे लगता है कि जिस पर ज्यादा विवाद भी नहीं है वह यह है कि उसको भय लगने लगता है। अब भय के बहुत से कारण हो सकते हैं, मेरे जीवन का क्या होगा, मैं कैसे बचूंगा, मेरे खाने, अब वो जो भी उस समय उसके दिमाग में बातें आ रही हों हम उस पर नहीं जाते। तो मित्रों दो बातें हो गई, पहला तो यह कि यह नैसर्गिक रूप में ही होता है, दूसरी बात यह हो गई कि यह मूलतः असुरक्षा की भावना से जुड़ा हुआ है, या इसे हम और भी थोड़े से दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि यह अस्तित्व के संकट से जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए कि हमें पूरी जिंदगी भर यह चिंता सताती रहती है कि हमारी मृत्यु न हो जाए। अब सोच करके देखिए कि मृत्यु की चिंता, मृत्यु का भय, देखिए चिंता भी एक तरीके की यहां भय ही है, या आशंका कह लीजिए, वह भी भय का एक सॉफ्ट फॉर्म है, वह भी भय ही है। आशंकित अगर हम रहते हैं तो वह भी लगातार भय ही है। तो ये जो मृत्यु का भय है ये हमारे अंतस चेतना में, अंतर मन में, सबकॉन्सियस के अनकॉन्सियस माइंड में इतने गहरे बैठा हुआ है कि भले ही हम हर समय उसके बारे में नहीं सोचते हैं, हर समय उसके बारे में कहते भी नहीं है, बताते भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी चेतना को लगातार जकड़े रहता है। क्योंकि देखिए मृत्यु तो एक ऐसी घटना है कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, किसी भी कारण से हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं नहीं अभी तो ये होगी ही नहीं, और इसीलिए हर क्षण ये चिंता सताती रहती है, जिसे मैंने कहा अस्तित्व के संकट की का भय कि पता नहीं मैं इस दुनिया में कब तक हूं, क्या हो जाए, यह भय। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है भय का मुझे लगता है और वह है सुख की चाहत। सुख की चाहत का मतलब है कि जो कुछ भी मेरे पास है कहीं वह मुझसे गायब न हो जाए। मित्रों इसे ही भारतीय दर्शन में कहा गया है मोह, है ना। अगर हम थोड़ी सी आध्यात्मिक शब्दावली का प्रयोग करें या दार्शनिक शब्दावली का तो आप कह सकते हैं मोह के कारण हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं, यदि कि हमें केवल अपने ही अस्तित्व की आशंका रहती है बल्कि हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, हमारे जो प्रिय जन हैं, उनके भी अस्तित्व की आशंका हमें घेरे रहती है और कहीं ना कहीं हम भयभीत रहते हैं। और देखिए कि कैसे उनके जरा भी अनिष्ट की खबर हम सुनते हैं और सुनते ही हम अंदर से कितने विचलित हो जाते हैं, मतलब हमारा जो भी इंटरनल बैलेंस है वो बिल्कुल ही गड़बड़ाने लगता है। मित्रों, इसके बाद फिर देखिए भय के दूसरे बहुत से कारण हैं। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसे इसी बात का भय है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है, उसे इस बात का भय है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं टॉप करने से रह जाऊं। तो उसके तो बहुत सारे कारण हैं, हम उन कारणों पर नहीं जाते। आप सब अपने अपने भय की एक सूची बनाइए कि किन किन चीजों को लेकर के आपको भयभीत, अंदर से आप भयभीत रहते हैं। आपको पता लग जाएगा कि मेरे भय के ये कारण है। लेकिन एक बात मित्रों पक्का है, ये मानकर चलिए कि आपके अंदर अगर भय है तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत बुरी चीज घेरे हुए है। ये मान करके चलिए कि इसने सबको घेर रखा है। लेकिन यदि आप बात बात में भयभीत होते हैं, हर क्षण भयभीत रहते हैं, तब जरूर चिंता की बात है। और सच पूछिए तो उसी चिंता को दूर करने के लिए, उस चिंता से आपको मुक्त कराने के लिए ही मैंने लाइफ मैनेजमेंट के इस टॉपिक को आज चुना है। मित्रों, मैं इसके बहुत ही विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही व्यावहारिक इश्यू है, व्यावहारिक मामला है। आप सब इससे बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, अनुभव के स्तर पर आप जानते हैं। मैंने थोड़ी सी शुरुआत के में इसकी संक्षिप्त व्याख्या कर दी है। अब मैं इस बात पर आता हूं कि इससे बचा कैसे जा सकता है, इसका हम मुकाबला कैसे कर सकते हैं, या यूं कह लीजिए कि इससे हम छुटकारा कैसे पाएं। आइए मित्रों, हम थोड़ा सा इस पर बात करके देखते हैं। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं कि एक तो हमारा यह नैसर्गिक भाव होता है जो हमें जन्म से ही मिल जाता है, दूसरा यह कि हमारा पालन पोषण किस तरीके से हुआ है, हमारा समाज किस तरीके से रहा है, हम मेरे प्रति दूसरों का जो बिहेवियर पैटर्न है वो किस तरीके का रहा है, वह भी मेरे अंदर भय पैदा करता है। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, अगर बहुत ही प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में उसको रखा गया, एनवायरमेंट में रखा गया है, नहीं तुम वहां मत जाना, देखो तुम ये मत करो गिर जाओगे, देखो तुम वहां मत जाओ, हाथ मत लगाना, डर, तो बच्चे के अंदर एक डर बैठ जाता है। उसे अनुभव नहीं हो पाता तो स्वाभाविक तौर पर उसके डरने की एक आदत बन जाती है जो बहुत खतरनाक होती है। देखिए, डरना जहां तक मनोभाव की बात है तो कुछ सीमा तक ठीक भी होता है कि भैया शेर आ रहा है तो आप डरिए, अंधेरे में आप चल रहे हैं तो थोड़ा सा डरिए कि कहीं गड्ढे में पैर न पड़ जाए, तो कुछ सीमा तक तो डर ठीक भी है। लेकिन जब वो आदत बन जाती है कि हम हर चीज से डर रहे हैं, मतलब मनोवैज्ञानिक समस्या तो यहां तक हो जाती है कि आदमी खुद से डरने लगता है। ये बहुत एक जबरदस्त किस्म की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कुछ लोगों में होती है ना, फोबिया जिसे आप कहते हैं, ऊंचाई से डर लग रहा है, पानी से डर लग रहा है, थोड़ा सा ब्लड देख लिया तो उससे डर लग रहा है, तो ये सारे के सारे उसके मनोवैज्ञानिक संकट हैं, मनोवैज्ञानिक बीमारियां हैं। इनका इलाज एक अलग तरीके की बात है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। मित्रों, यहां मैं आपको तीन चार चीजें एक यू कह लीजिए रिमेडी के बतौर, उपाय के बतौर बताना चाहूंगा। देखिए, जो जीवन में हमें दूसरे तरह के जो डर होते हैं उनसे बचाव के लिए जो सबसे एक बहुत प्रमुख कारण मुझे मालूम पड़ता है मित्रों, वह यह है कि हम गलत काम करने से बचें। देखिए, होता यह है कि हमने गलत काम किया, चुपचाप हमने किया, दूसरों को नहीं मालूम, दूसरों ने देखा भी नहीं, लेकिन हमने तो देखा है, हमारी चेतना में तो वो गलत काम दर्ज है। तो होगा क्या कि वो जो मैंने गलत काम किया है वह मुझे कंडक्ट करने लगेगा, संचालित करने लगेगा, और जब भी उससे संबंधित कोई घटना होगी तो मैं डर जाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि मैं बाजार में बड़े आराम से घूम रहा हूं, ठीक है, चलिए मैं आराम से घूम रहा हूं, और भी लोग घूम रहे हैं, मैंने किसी की पॉकेट काट ली, उसके पॉकेट से, पैंट की जेब से मैंने पर्स निकाल लिया और पर्स निकाल करके अपनी जेब में रख लिया। देखिए, अभी तक तो मैं बड़ा निश्चिंत होकर के घूम रहा था, लेकिन अब क्या मैं निश्चिंत होकर के घूम पाऊंगा? या तो मैं फैसला करूंगा कि भैया यहां से खिसक लो, या फिर अगर मैं घूम रहा हूं तो आप देखिए कि जहां भी मुझे पुलिस वाला दिखाई दे जाएगा मैं डर जाऊंगा, कि ऐसा लगेगा कि जैसे ये मेरे पास ही आ रहा है, या उस आदमी का जो डील डॉल था, जिस तरह के कपड़े पहने हुए थे, उस तरह का कोई दूसरा भी व्यक्ति दिख जाएगा एकदम मैं समझ जाऊंगा, यार कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता चल गया है वह मेरे पास ही आ रहा है। इसका मतलब है कि मैंने एक गलत काम करके अपने लिए डर का वातावरण निर्मित कर लिया। मित्रों, ये गलत काम हर दृष्टि से, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो हमारे घर में हो, हमारे दैनिक जीवन में हो, कहीं भी हो, जो गलत है वो गलत है, और फिर वो अपने से जुड़ी हुई जैसी ही चीजों को पाएगा भयभीत हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप गलत काम करने से बचें, हमें बचना ही चाहिए। दूसरा यह है फ्रेंड्स कि जब दूसरी तरह की चुनौतियां आती हैं जीवन में, डर सामने होता है तो फिर हमें उसे सामना करना चाहिए। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बच्चों को थोड़ा सा साहसी बनाने के लिए जरूरी है कि आप उन्हें जोखिम मोल लेने दें। ऐसा नहीं कि ये मत करो, जब बहुत टोका टाकी करेंगे तो वो उनको अनुभव होगा ही नहीं, तो उसके अंदर वो क्षमता पैदा नहीं होगी। तो मित्रों, सामना करें, भागे नहीं, टाले नहीं। इसके लिए विवेकानंद जी का एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है जो उन्होंने खुद ही बताया है कि किस तरह से वो, शायद हरिद्वार या ऋषिकेश की बात है, कि जब वो वहां गए थे तो कुछ बंदर उनके पीछे पड़ गए। अब जैसे ही बंदर पीछे पड़े, वहां बहुत से बंदर हैं, अगर आप गए होंगे तो आपका आपने देखा होगा, तो जैसे ही बंदर पीछे पड़े, अब विवेकानंद भागने लगे, तेजी के साथ भागने लगे, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए, बचने के लिए कह लीजिए। उतने में उन्होंने उन्हें एक आवाज सुनाई दी कि डरो मत, सामना करो। वो वहीं रुके और देखे कि एक जो कोई भी जो साधु महात्मा थे, उन्होंने ये आवाज लगाई थी कि भागो मत, सामना करो, और वो खड़े हो गए। और जैसे ही वो जम करके खड़े हुए, वो जितने भी बंदर थे सब थोड़ी देर ठिठके और वापस चले गए। यानी कि जैसे ही हम सामना करते हैं, चीजें कंट्रोल में आने लगती हैं। हमें भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। तीसरी बात यह है मित्रों की, चलिए ये तो तब की बात है जब हमारे सामने कोई संकट आ गया है, लेकिन हमें अपनी जिंदगी में भी जो छोटी छोटी चुनौतियां होती है ना, उन्हें स्वीकार करना चाहिए, उन्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए। थोड़ी बहुत परेशानियां आ रही हैं तो ये नहीं कि हम अपनी परेशानियां दूसरों को सौंप दें कि भैया तुम करो, या हम मना कर दें कि यार नहीं नहीं मैं इस संकट में नहीं पड़ना चाहता, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, भैया तुम मुझको मत बताओ अपनी परेशानियां, मैं अपनी परेशानियों से ही बहुत परेशान हूं। इस तरह की बातें हम अक्सर कर देते हैं क्योंकि हम अपने को संकट में नहीं डालना चाहते। तो मित्रों, कोशिश कीजिए कि दैनिक जीवन में जब भी इस तरह की कोई स्थितियां आती हैं तो आप लीजिए, या यूं कह लीजिए कि अगर ग्रुप में आप हैं तो लीडर बनने की कोशिश कीजिए ना कि हाँ मैं आप लोगों की समस्याओं का निराकरण करूंगा, या अगर दूसरे की भी कोई समस्या है और वो नहीं सुलझा पा रहा है तो आप देखिए कि क्या आप उस समस्या को सुलझाने में आप मदद कर सकते हैं। तो इससे आपके अंदर एक साहस पैदा होगा, सच पूछे तो एक व्यावहारिक बुद्धि भी पैदा होगी कि जब इस तरह के संकट आते हैं, इस तरह की समस्याएं आती हैं तो उनका मुकाबला कैसे किया जाता है। अगर मेरे अंदर वो व्यावहारिक बुद्धि नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा, मैं उससे भागूंगा, और भागना ही डर है। इसके बाद एक और भी मैं थोड़ा सा बात कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि हम अपनी जिंदगी में बहुत आशंकित रहते हैं अपने लोगों को लेकर के, तो एक काम हमें करना चाहिए जो मैं अक्सर अपने प्रिय श्रोताओं से अनुरोध करता हूं कि आप एक दिन की अपनी आशंकाओं की लिस्ट बनाइए, कि आज सुबह सुबह लिस्ट बनाइए कि कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये तो घटना नहीं घट जाएगी, कहीं ये तो नहीं घट जाएगी, और रात में सोने से पहले उसको चेक कीजिए इनमें से कितनी कितनी घटनाएं घटी, तो आपको पता लगेगा कि कोई भी घटना नहीं घटी, जितनी भी आशंकाएं थी सब झूठी साबित हुई। तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि नहीं, ये जो आशंकाएं होती हैं ये सच नहीं होती हैं, ये थोती होती हैं, झूठी होती हैं। तो फिर आपका दिमाग आशंकाओं को पैदा करने में नियंत्रित हो जाएगा, फिर वो आशंकाओं को पैदा नहीं करेगा, क्योंकि उसे लग रहा है ना कि तो फालतू की चीज है, तो झूठी ही होती है, तो क्या मतलब है उसको जन्म देने का। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ उपाय आपको डर का मुकाबला करने के लिए, डर का सामना करने के लिए बताए हैं। आप इनको प्रैक्टिस में लाइए, देखिए कि कैसे अंदर से धीरे धीरे डर कम होने लगेगा, फिर गायब होने लगेगा, और फिर आप अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस करने लगेंगे। आपकी चेतना एक परफेक्ट लेवल पर आकर के आपकी मदद करने लगेगी जीवन की उपलब्धियों के लिए भी और जीवन को एंजॉय करने के लिए भी। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं आज के इस विषय को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।